अभिमन्यु ने उत्साह से पूछा, क्यों, हम तो यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आए हैं, तो फिर हम क्यों चुप रहे भला? और बताइए ना, खाना खत्म करने के बाद हम आपको फिर से किस कर सकते हैं ना? जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, इप्सिता ने अभिमन्यु को परेशान करने के लिए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, क्यों? अभिमन्यु अपसेट होकर बोला। इप्सिता ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए। इतना बोलकर वो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ ना, अब हम आपसे सिर्फ किस मांग रहे हैं, तो आप इस तरह से नखरे दिखा रही हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, हमें तो आपसे बहुत सारी किसेस चाहिए। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता के नज़दीक आया और उसके गाल पर एक किस करते हुए बोला, ऐसे। इप्सिता अभिमन्यु के किस को महसूस करके मुस्कुराने लगी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु अपने गाल पर हाथ रखकर इप्सिता को निहार रहा था। इप्सिता उसे इस तरह देखकर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं अभिमन्यु, ऐसे मत देखिए, हमें शर्म आती है। आपको हमसे शर्मा रही है? हमें नहीं लगता कि आपको इस तरह हमसे शर्माना चाहिए, और वैसे भी हम पहले भी तो एक बार किस कर चुके हैं ना, आपको याद है ना? अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु ने 6 महीने पहले पार्टी में हुई किस को याद करते हुए ये बात इप्सिता से कही। असल में अभिमन्यु जानना चाहता था कि इप्सिता को अभी भी वो सब याद है या नहीं। इप्सिता ने जैसे ही उस किस को याद किया, वो मुस्कुराते हुए बोली, ऑफकोर्स हमें याद है, हम भला उसे कैसे भूल सकते हैं, वो हमारी लाइफ की पहली किस थी। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, वो इप्सिता की तरफ देखने लगा। इप्सिता के मुंह से ये सुनकर कि वो उसकी पहली किस थी, वो और भी ज्यादा खुश हो गया। वो इप्सिता के बिल्कुल करीब आया। उसने इप्सिता के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, जानते हैं हम? इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता के कंधे पर अपना सिर रखा और इप्सिता की गाल को चूमते हुए बोला, आप जानती हैं, उस किस के बाद से ही हम आपके लिए काफ़ी कुछ फील करने लगे थे, लेकिन उस समय हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिल पाया। इप्सिता अभिमन्यु की बात चुपचाप सुन रही थी। जिस तरह से अभिमन्यु ने इप्सिता के कंधे को पकड़ रखा था और वो उसके इतने करीब था, इप्सिता के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थीं। अभिमन्यु के चेहरे को अपने चेहरे के इतने नज़दीक देखकर इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, आप अभी ये सब बातें छोड़िए और हमें ये बताइए, आप यहाँ पर हैं तो फिर उदयपुर में आपके सारे काम कौन देख रहा है? अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की बात सुनी, उसने एक गहरी सांस ली और उसने इप्सिता के कंधे पर से अपना हाथ हटाकर आराम से कुर्सी का सहारा लेते हुए कहा, समर्थ है वहाँ पर सब कुछ हैंडल करने के लिए, और वैसे भी हम अपने अलावा सिर्फ उसी पर ही भरोसा करते हैं, बाकी तो हमें राजमहल के किसी भी इंसान पर जरा भी भरोसा नहीं बचा है। क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इप्सिता उसकी बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आप ये बात पूछ रही हैं, भूल गई क्या, हमारी शादी किस वजह से रुकी थी? हमारे घर वाले ही थे जिन्होंने आपको जान से मारने की प्लानिंग की थी, और अभी अगर हम दोनों यहाँ पर इस तरह से नहीं बैठे होते, बल्कि हम दोनों भी शादीशुदा कपल की तरह राजमहल में होते और अपनी फ्यूचर की फैमिली प्लानिंग कर रहे होते। अभिमन्यु इतना बोलकर मुस्कुराया और इप्सिता उसकी बात सुनकर थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई। उसने अभिमन्यु का चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, कुछ भी मत बोला करिए, वैसे ये बताइए, आपका काम तो काफी ज्यादा होता है, तो फिर क्या समर्थ आपका सारा काम संभाल लेते हैं? अभिमन्यु ने समर्थ की थोड़ी तारीफ करते हुए कहा, हाँ, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और वो सिर्फ हमारा ही काम नहीं, साथ में अपनी कंपनी के भी काम को देख लेता है, और उसने ही हमें यहाँ पर भेजने के लिए और आपको मनाने के लिए भी समझाया था। सच में कभी कभी तो हम खुद को लकी फील करते हैं कि हमें समर्थ जैसा बेस्ट फ्रेंड मिला। इप्सिता अभिमन्यु से समर्थ के बारे में ही बात कर रही थी कि तभी अभिमन्यु का फोन बजा, और अभिमन्यु ने जैसे ही अपना फोन उठाया और स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, शैतान की बात की, और फोन भी आ गया। इप्सिता उसकी बात सुनकर उसे हैरानी से देख रही थी। तभी इप्सिता की नज़र मोबाइल फोन की स्क्रीन पर गई, उस पर समर्थ नाम लिखा हुआ था। अभिमन्यु ने उसका कॉल वहीं पर पिकअप करने से पहले इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, हम समर्थ से थोड़ी सी बात कर लें? इप्सिता ने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल, और आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं? वैसे भी हो सकता है उन्होंने कोई जरूरी बात बताने के लिए कॉल किया हो। इप्सिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, हाँ, वो इतने दिनों से हमें सारी जरूरी बातें ही तो बता रहा है। इतना बोलकर अभिमन्यु ने कॉल पिकअप किया और वो वहाँ से उठकर कहीं भी नहीं गया, बल्कि वहीं इप्सिता के सामने ही बैठकर उससे बात करने लगा। अभिमन्यु ने अभी भी अपने हाथ में इप्सिता का हाथ पकड़ रखा था, इसलिए उसने मोबाइल फोन को स्पीकर पर रखते हुए कहा, हेलो समर्थ, क्या हुआ? फोन की दूसरी तरफ से समर्थ की आवाज आई, तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं, अभिमन्यु ने कहा। तुम पहले ये बताओ, वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है? इप्सिता भाभी से तुम्हारी बात हुई या नहीं? समर्थ ने कहा, हाँ बात हुई, और हमने उन्हें सच्चाई बताकर मना भी लिया है, अभिमन्यु ने खुश होते हुए कहा। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी क्योंकि अभिमन्यु स्पीकर पर समर्थ से बात कर रहा था। इप्सिता ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अभिमन्यु इस तरह से बात करेगा। वो अभिमन्यु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, वैसे तुमने हमें किस लिए फोन किया है ये बताओ। समर्थ ने अभिमन्यु की बात सुनकर कहा, मैं ये बोल रहा था कि अगर तुम्हारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया हो तो फिर प्लीज तुम अब जल्दी यहाँ वापस आ जाओ। क्यों, अब क्या हो गया, अभिमन्यु उसकी ये बात सुनकर बोला। समर्थ ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, चाचा जी अपनी अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं, तुम्हें नहीं पता लेकिन वो तुम्हारे बड़े भाई अभिनव को राजा सा बनाने की पूरी कोशिश में लग गए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मासा के साथ भी गद्दारी करना शुरू कर दिया है। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी उसने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, अब हम उनसे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब वो इप्सिता को जान से मारने की प्लानिंग कर सकते हैं वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारी शादी ना हो और हमें राजगद्दी ना मिले, तो अब राजगद्दी हासिल करने के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी ही वहाँ आएंगे, अभिमन्यु की ये बात सुनकर समर्थ ने कहा। तुम्हें पता है मासा ने उन्हें अभिनव का राज्याभिषेक करने से रोकने के लिए उनसे भी शादी वाली बात कही, तब से तुम्हारे चाचा जी अभिनव के लिए किसी राजघराने की लड़की ढूंढ रहे हैं, उन्हें जैसे ही कोई लड़की मिल जाएगी वो तुरंत ही अभिनव की शादी कर देंगे और फिर वो उदयपुर का नया राजा बन जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आओ। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन नजर आने लगी थी, लेकिन इप्सिता उसके चेहरे को देखकर उसकी टेंशन समझ गई और उसने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ के ऊपर रखकर उसे तसल्ली दी। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने समर्थ से कहा, वैसे एक बात कहें, हमें वहाँ वापस आने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, वैसे भी समर्थ तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हम इतने सालों से कुंवरसा की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो हम अब इन सारी जिम्मेदारियों से बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं और अगर चाचा जी यही चाहते हैं कि अभिनव उदयपुर के राजा बने तो यही सही, वैसे भी अगर अभिनव हमारे बड़े भाई हैं तो राजा बनने का हक उन्हीं का है हमारा नहीं।
जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही इप्सिता हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अभिमन्यु के अलावा और कोई भी राजा बने। उसे पता था सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु ही राजा बनने का हकदार था। अभिमन्यु ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम वैसे भी जानते हो हमें कभी भी राजा बनने का कोई शौक नहीं था, हम तो बस सिर्फ और सिर्फ मासा और राजमहल के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, इसलिए अगर अभिनव राजा बन भी जाते हैं तो हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। समर्थ उसकी पूरी बात सुनकर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, सीरियसली अभिमन्यु तुम ये बात बोल रहे हो, हमें तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, सब कुछ जानते हुए भी कि अगर तुम्हारे चाचा सा भाई या तुम्हारे अलावा कोई भी राजा सा बनेगा तो राजमहल में कितने बदलाव हो जाएंगे और कुछ भी सही तरह से नहीं होगा, उसके बावजूद भी तुम ये बात कैसे बोल सकते हो, और मैं अब दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि यहाँ पर मैं रहकर अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ही राजा बनो, मैं क्या, मासा, अर्पिता और सब लोग यही चाहते हैं, तुम हम सब की उम्मीद पर इस तरह से पानी नहीं फेर सकते, समझे। अच्छा ठीक है, अब आप हमें डांटना बंद करिए, अभिमन्यु समर्थ की डांट सुनकर बोला। समर्थ ने बात बदलते हुए कहा, वैसे तुम हमें ये बताओ इप्सिता भाभी से तुम्हारी दात हुई या नहीं, तुम जल्दी उनसे शादी कर लो जिससे कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो सके।